आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया है। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बनाने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता वाले खंड पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ये खंड तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस शर्त के निर्धारण के संबंध में कोई समुचित नियम नहीं बना लेती हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आज इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाया। पीठ ने कहा कि उसने कानून के प्रत्येक पहलू के प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है। पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। इस बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। मुंबई से संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधेयक सबसे लंबी चर्चा के बाद संसद में पारित हुआ।
सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है, और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे वो भी बंद हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया से 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज बिहार में रेल क्षेत्र के लिए भी 6,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दानापुर से जोगबनी के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जबकि सहरसा से अमृतसर के छेहरता और जोगबनी से ईरोड के बीच 2 अमृत भारत रेलगाड़ियों के परिचालन की शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पूर्णिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रहा है तो नियमों को भी उसी गति से क्रियान्वित होने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए एआई की रूपरेखा और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी पर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने एआई के तीव्र विकास को लेकर आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन नैतिकता से पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों के लिए बेहतर शहरों की आवश्यकता पर बल देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एआई करीब समाधान प्रदान करने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भविष्य की प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने और प्रतिभा पाइपलाइन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई उपयोगकर्ता अब एक दिन में 10 लाख रुपए तक के व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निर्धारित श्रेणियों में व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन के लिए एकल लेनदेन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन बनी रहेगी। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त में बढ़कर 0.52% हो गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में सकारात्मक मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण गैर खाद्य वस्तुओं, अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पादों और अन्य परिवहन उपकरणों की कीमतों में वृद्धि के कारण है। झारखंड में हजारीबाग जिले के टाटीझरिया थाना क्षेत्र में आज सुबह हुई एक मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47 राइफल सहित कई हथियार बरामद किए। ये अभियान हजारीबाग पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त रूप से चलाया था। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति की संभावना व्यक्त की है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज हवाएं चलने तथा वर्षा का अनुमान है। एशिया कप क्रिकेट में आज अबुधाबी में ग्रुप एक के मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात का सामना ओमान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। दुबई में ग्रुप ए के एक अन्य मैच में रात 8 बजे श्रीलंका का सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।